सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा रिव्यू सेशन चूंकि नहीं हो सका शुरू में, मेरे ख्याल आप लाइन ड्रॉप कर दें क्योंकि मैंने माइक लिया हुआ, तो इंशाल्लाह ताला जब क्लास दोबारा स्टार्ट होगी तो फिर आप फ़ोन से ले लीजिएगा, ठीक है इंशाल्लाह। चलें जी, पहले निकाल लें अपना सबक सलातुल कुसूफ का, उसको शुरू करते हैं। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين جی صلاة الكسوف آپ نے نکال لی یہ ٹیکسٹ اوپن کر دیجئے انشاءاللہ تعالیٰ میں आप लोगों से पूछना शुरू करती हैं। अच्छा एक नॉट स्टूडेंट हैं 713 से जो है 713377, आप अपना नाम बताएं फिर उसके बाद मैं आपसे सवाल करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी तैयबा आप बताएंगी कि कसूफ और खसूफ में क्या फर्क है? अच्छा चलिए नेक्स्ट टाइम फिर आप इंशाल्लाह देख के आइएगा इसको। अच्छा जी ये 714 से कौन है, तहसीन है क्या 714484? जी ये तहसीन
है।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी नाई जानती आप बताएंगी कि कुसूफ और खुसूफ में क्या फर्क है? नहीं दोनों में क्या फर्क है, दोनों अल्फाज में कुसूफ और खुसूफ में?
ओ अच्छा, नमाज खुसूफ में कब्र की अजाब की याद दिखानी होती
है। नहीं अब आप सुनिएगा कि कोई मैं किसी और से पूछती हूँ। जी है मेरे ख्याल शकीला आंटी आप बताएंगी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी
जी कसूफ ये मतलब वैसे तो ये याद नहीं है, लेकिन एक चांद जब गिरन होता है जब नमाज पढ़ जाती है, जब सूरज गिरन होता है तब नमाज पढ़ी जाती है, इसमें तौबा और इस्तिगफार आफत की बड़ाई की दुआ मांगी जाती है।
ठीक है, लेकिन मैं जो पूछ रही हूँ सवाल जी हुमा गनी आप बताएंगी कुसूफ और खुसूफ में क्या फर्क है, कहीं कुसूफ आता है
वालेकुम
अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
नहीं आवाज आ रही?
जी जी आ रही है बताइए।
जी अल्हम्दुलिल्लाह, कुसूफ जो है काफ सीन सा है इसका रूट वर्ड और ये इसको बोलते हैं सूरज गिरन, और खुसूफ का जो रूट वर्ड है खास सीन वो है चांद गिरन, तो सूरज गिरन और चांद।
आपने कहा कुसूफ, क्या कहा आपने कुसूफ क्या है?
सूरज किरण, सूरज किरण, सोलर एक्लिप्स।
अच्छा नहीं जहाँ तक मुझे पता है, मुझे नहीं पता कि सर ने क्या बताया, मगर जहाँ तक मेरे इल्म में कुसूफ तो चांद ग्रहण को कहते हैं, खुसूफ कहते हैं चांद ग्रहण को। जी सही आपने कहा, खुसूफ चांद ग्रहण को कहते हैं और कुसूफ सूरज ग्रहण को कहते हैं। शाबाश सही कहा है आपने। अच्छा तो इन दोनों में क्या फर्क है, कहीं खुसूफ आया कहीं कुसूफ आया?
दोनों में एक दूसरे के मध्य मुकाबल बोल सकते हैं, तो अगर सूरज ग्रहण है तो उसको हम खुसूफ खुसूफ का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, और अगर चांद ग्रहण है तो खुसूफ का वर्ड यूज कर सकते हैं।
शाबाश बिल्कुल सही, यही मैं आप लोगों से पूछना चाह रही थी, कहीं आप लोग देखें कुसूफ लिखा हुआ कहीं खुसूफ लिखा हुआ तो दोनों में क्या फर्क है। फर्क यही है कि वैसे तो दोनों एक दूसरे के मुकाबले बोले जाते हैं, लेकिन खुसूफ जैसे चांद ग्रहण और कुसूफ सूरज ग्रहण के लिए खास हैं, मगर खुसूफ से सूरज ग्रहण भी लिया जा सकता है और चांद ग्रहण भी लिया जा सकता है, और कुसूफ से भी सूरज और चांद ग्रहण दोनों लिए जा सकते हैं, तो दोनों एक दूसरे की जगह पे भी आ सकते हैं, दोनों वर्ड्स सूरज और चांद दोनों के लिए बोले जा सकते हैं, तो इसलिए ज्यादा याद रखना बहुत सारा मुश्किल हो जाता है, मगर क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के लिए, मगर अगर स्पेसिफिक लिया जाए तो फिर हाँ ये बात मैं पूछना चाह रही थी कि स्पेसिफिकली क्या है। अच्छा जी अब इसकी नमाज के बारे में जो लोग नहीं है यहाँ पे वो प्लीज आ जाए फोन लाइन पे, फोन लाइन को ज्वाइन कर लें क्योंकि मैं यहीं से सवाल पूछूंगी, जी राजता कालिया, आप बताएंगे कि ये नमाज कहाँ पे पढ़ी जाती है?
अस्सलामुअलैकुम उस्ताज़, मेरी आवाज़ आ रही है?
जी 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 बताइए।
ये मस्जिद में पढ़ी जा सकती है और घर में पढ़ी?
अच्छा, वैसे ये नमाज मस्जिद में ही पढ़ी जानी चाहिए और मस्जिदों में खास इसका
एक तरह पढ़ना चाहे तो
जी, तो वो मस्जिद चली जाए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने भी तो पढ़ी ना जमात में पीछे। तो अब अगर नहीं कहीं पे भी इंतजाम है कोई, तो फिर तो जाहिर ही बात है घर में ही पढ़े हैं, क्योंकि आजकल इस चीज का तो कोई यानी मैं यही सोच रही थी कि देखिए हमारे यहाँ यहाँ पे तो बताया गया है कि कोई बड़ा आदमी के मर जाए तो उसके साथ रिलेट कर देते थे उस जमाने में चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण को, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहिम की वफात हुई थी तो उस वक्त भी इस चीज को इसके साथ रिलेट कर दिया गया था। लेकिन हमारे यहाँ शायद ये तो नहीं, मगर और इतनी सारी खुराफात है, कभी कहते हैं कि भाई हामिला औरत बैठे नहीं, कब लेटे नहीं, पता नहीं क्या क्या, छुरी नहीं इस्तेमाल करे, और पता क्या, मुझे पूरी चीजें नहीं मालूम क्योंकि ना कभी इन चीजों को फॉलो किया ना कभी इनके ऊपर ज्यादा तवज्जो दी, मगर इस तरह की काफी लोगों को पता होंगी कि ऐसी सुपरस्टिशियस बातें जो है ना हमने चांद ग्रहण के साथ रिलेट की हैं, खास तौर पे चांद ग्रहण के साथ। आपकी फोन लाइन नहीं मिल रही, इनको क्यों नहीं मिल रही मुझे नहीं पता वजह, कोई एडमिन इनकी हेल्प कर दे। एनी हाउ, तो हमें क्या जरूरी क्या है, किस चीज को देखना चाहिए कि ये सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण, नमाज का अहतमाम करें, ठीक है, और उसकी तरफ तवज्जो कम है, और ये तो आज तक बचपन से कभी ना सिखाया गया ना बताया गया, तो इस चीज को देखना चाहिए। अच्छा, अब मुझे जी नाज़नीन आप बताएंगी कि इस नमाज का तरीका क्या है, मुझे सिर्फ स्टेप्स बताइएगा।
वालेकुम
अस्सलाम।
जी दो रकात नफिल पढ़ेंगे हम, यानी जो इमाम पढ़वाएंगे, और फिर पहली रकात में जैसे फातिहा के बाद किरात करेंगे, और उसके बाद जो है फिर रुकू में जाना है, और ये किरात भी बहुत लंबी होगी, उसके बाद फिर पकड़ा
था। अच्छा, आप
रुकू में जाना है,
ठीक है, आप ये ना बताएं कि कौन सी लंबी है, बस आप मुझे स्टेप्स बताएं, क़याम और उसके बाद
जाना है
रुकू, फिर
रुकू,
ठीक है,
फिर से खड़े होना है, फिर से किरात करनी है,
ठीक है,
फिर रुकू में जाके फिर सजदे में जाना है,
ठीक है,
फिर सेकंड रकात भी इसी तरह से रिपीट होगी।
शाबाश, सही है बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों को मैं ये चाहती हूँ कि चूंकि ये लंबी लंबी अहादीस है, आप लोग इनमें लॉस्ट हो जाते हैं, तो आप ऐसा करें कि एक जगह पे सिर्फ नमाज कसूर का तरीका उसमें लिखे क़याम, फिर आगे एरो बना के उसके बाद क्या है रुकू, फिर उसके बाद अगेन एरो उसके आगे लगाए, उसके बाद लिखे क़याम अगेन विदाउट फातिहा, विदाउट सूरह फातिहा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे एरो लगा के लिखे रुकू, ताकि आपके लिए सिंपल हो जाए, फिर आगे लिखे सजदा, फिर सेकंड सजदा, फिर उसके बाद क़याम, ये यानी दूसरी रकात शुरू हो गई, क़याम रुकू, क़याम रुकू, और उसके बाद फिर सजदा, ताकि आपके लिए इजी हो जाए, आप उसके अंदर ढूंढते नहीं रहेंगे क्या जब कभी पढ़ने का मौका है तो अब पढ़नी कैसे थी, वो कभी सीखा था हमने और उसके बाद कभी पढ़ी तो नहीं। मगर ये है कि उसके लिए हमें लंबी किरात की जरूरत है, अब अगर घर में पढ़े तो जी सूरह फातिहा जो फर्स्ट रखा है ना, उसके बाद जब रुकू करना है और उसके बाद फिर खड़े होना है, तो सूरह फातिहा नहीं पढ़नी, ठीक है, उसको ब्रैकेट में लिख लें, किरात लिख दें और नो सूरह फातिहा, ठीक है, ऐसा बन जाएगा आपके सामने, और जब आपको कभी भी ये नमाज पढ़नी होगी तो सिर्फ आप इसको खोल के देख लें। सेकेंड रका में भी इसी तरह, जब आप सजदों से खड़े होंगे तो लिखें क़याम विद सूरह फातिहा, उसके बाद रुकू डैश या फिर एरो डालें रुकू, उसके बाद फिर आगे एरो डाल के लिखें क़याम विदाउट सूरह फातिहा, ओनली क़िरात लिखते हैं बस, कि इस तरह से आपको जरा ज्यादा आसानी हो जाएगी, बार बार उसमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। मगर ये बार बार नहीं कहने की जरूरत कि कौन सा किसमें कम पढ़नी किसमें ज्यादा, याद रखें छोटा होगा, ठीक है, पिछला लंबा होगा, उससे कम से कम कम से कम होता जाएगा, ये सबसे लंबा जो है ना वो फर्स्ट वन होगा, सेकंड उससे थोड़ा छोटा होगा, तो इसमें क़याम कितने सारे होगा, यानी चार समझ लें क्याम हो गए, चार दफा खड़े होना है, चार दफा कैरात हो गई आपकी, लेकिन हर दफा कम से कम कम से कम कम से कम, फोर्थ वाली में तो बिल्कुल ही कम हो गए। इसी तरह रुकू हर एक दफा कम से कम छोटे से छोटा होता जाएगा। तो पहला सोचे फिर कितना लंबा होगा, अब इससे अंदाजा लगा लें कि हजरत अस्मा जो है ना वो बिल्कुल उनको यानी ऐसे जैसे नहीं हम कहते कि मैं तो बेहोश होने लगी थी, खड़ी खड़ी इतनी थक गई, यानी इतनी हद तक उनकी हालत यानी ऐसे हो गई थकन से, या इंसान का इतनी लंबी नमाज से, हम तो तरावी पढ़ते हैं तो उसमें ही हम थक जाते हैं, तो ये तो बहुत ही लंबी है। अच्छा, इसकी तवालत का अंदाजा कितना आप कह सकते हैं हैं कि कितना, यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं और मुझे यहाँ पे नाम नहीं दिखाई दे रहे, 609240 से जो है जी, आपको मैंने वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। मरियम आप बताइए कि कितनी तवील है ये, जी यानी इसकी जो मिसाल दी गई है वो ये कि कभी आज तक इतनी नमाज आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाती कि उन्होंने आज तक कभी नहीं पढ़ी, इतनी लंबी कभी नहीं उन्होंने नमाज पढ़ी। तो इससे आप अंदाजा लगा लें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो तहज्जुद का ही आप अंदाजा, तहज्जुद की रकात पढ़ा करते थे, तो ये नमाज सोचें कि फिर कितनी इसकी तवालत का अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी होगी। अच्छा जी, जी 201437 पे जो है अजाब कब्र का इसमें क्या ताल्लुक है, इस नमाज के साथ क्या ताल्लुक आप देखते हैं? जी ईशरत आप बताएंगे कि अजाब कब्र के साथ क्या ताल्लुक है इस नमाज का, क्या रिलेशनशिप, क्या क्या इसमें नमाज कुसूफ में अजाब कब्र के साथ क्या ताल्लुक बताया गया इन अहादीस में?
इसमें हम दुआ मांग सकते हैं और कि ये इसमें दुआएं कबूल होती है, तो अजाब कब्र एक ये तो है, ये भी बात है कि इससे ये पता चलता है कि कब्र में अजाब होता है मर्दों को।
जी सही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शाबाश इशरत। यानी ये आप अंदाजा करें, जो लोग भी कहते हैं ना कि अजाब कबर की दलील बताओ, अजाब कबर नहीं होता, अजाब कबर कोई चीज नहीं है, प्लीज आप लोग नोट कर लें, जो लोग इसके ऊपर ईमान रखते हैं वो भी नोट करें, इसलिए क्योंकि आपके सामने कभी भी कोई ऐसा बंदा आ सकता है जो ये कहे कि मैं अजाब कबर को नहीं मानती या नहीं मानता, अल्लाह ताला माफ करे हमारे मुसलमानों में ही। देखिए ये भी एक जहालत की निशानी है कि आपको इतनी बात नहीं पता जो कि वाज़े हदीस में बयान है, और इसके ऊपर ईमान ना रखना तो इस हदीस का ही इनकार करना है, और अपने आप को अच्छे भले मुसलमान कहने वाले कहते हैं कि नहीं कोई अजाब नहीं है कब्र में, तो फिर ये सारी अहदीस के सिलसिले की हैं और एक नहीं है, बहुत सारी हैं। इसलिए आप इन चीजों को नोट कर लें, जब आपसे कोई बहस करे कि अजाब कब्र कोई चीज नहीं है तो ये उनको बताएं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अजाब कब्र से जो पनाह मांगी है इन अहादीस में, वो कौन सा अजाब कब्र है। तो एक तो ये बात हो गई, दूसरी आप जी और कौन है 732906 से जो है जी, इसमें हदीस में ये बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल होगा और फरिश्ता कहेगा कि मा इल्मुका बिहादर रजुल, इस आदमी के बारे में तुम्हारा क्या क्या जानते हो तुम, तो उससे क्या पता चलता है, जो लोग ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी कब्रों में मौजूद होंगे, आएंगे तशरीफ लाएंगे, तो आप इस हदीस से फिर कैसे इसको डिनाई करेंगे? जी 732906 जी, जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
यहाँ पे इस बात से मैं यहाँ पे बस इतना ये कह सकते हैं कि उस वक्त ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अल्लाह आलम के किस तरह से दिखाया जाएगा, लेकिन फरिश्ते सवाल करेंगे इस बारे में ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, इस शख्स के बारे में क्या सवाल है, तो वो किस तरह दिखाया जाएगा, वो किस तरह पूछा जाएगा, वो अल्लाह आलम यही करने कहा था।
जी सही सही, शाबाश। देखिए एक तो एक बात को समझ लें, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तस्वीर दिखाई जाती है या वो आते भी हैं तो हमने तो उनको पहले ही नहीं देखा हुआ, हम कौन सा पहचान सकते हैं, ठीक है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह अबू बकर सिद्दीक आ जाएं, हजरत उमर आ जाएं, हमें क्या पता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल कैसी है। तो सबसे पहले तो ये बात है, जो लोग कहते हैं जी वहां पे आके वो आएंगे तशरीफ लाएंगे, तो भाई हमने कभी देखा ही नहीं उनको, तो हम कैसे पहचानेंगे। वो तो अल्लाह ताला किस तरह दिल में डालेगा और कैसे ये होगा, वो इंसान के ईमान के ऊपर डिपेंड करता है। जो ईमान है उसके थ्रू वो बोलेगा, वो एक नूरे बसीरत होता है ना, उसके थ्रू बोलेगा। ये नहीं कि अब कोई पिक्चर्स दिखाई जा रही है, अच्छा जी कोई बताओ इनके अंदर से कौन से वाले, ऐसे नहीं है वो, उनको वाकई में हमारे सामने भी लाया जाए तो हम नहीं पहचान सकते। तो ये इससे ये बात ले लेना कि नहीं जी वो आएंगे तशरीफ लाएंगे और उनसे पूछा जाएगा भाई ये कौन, आप इनके बारे में क्या जानते हैं, तो फिर वो देखेगा, फिर वो पहचान लेगा, फिर वो कहेगा ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसमें भी जवाब में देखें हुआ से जवाब दिया, तो वो तो गायब का सीगा, और गायब के सीगे से तो आप नहीं कह सकते कि जो सामने खड़ा हो, तो इससे तो ये दलील बनती ही नहीं है बिल्कुल भी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई कब्र में लोगों के तशरीफ लाएंगे और कब्र में लोगों से, और उसके बाद उन्होंने यहीं तक भी तो नहीं ना छोड़ा, फिर आगे ये भी बना लिया कि भाई जब वो कब्र में आ जाएंगे तो फिर अब वो हमें जिफात हमारी करेंगे, तो फिर वो हमें वहां पे बचाएंगे भी, तो पता नहीं क्या क्या फिर आगे से आगे चीजें। तो इसलिए इस तरह का अकीदा रखना ये तो कोई यहाँ से साबित ही नहीं हो रहा। तो सबसे पहले जो कोई आपको ऐसे कहे तो उनको ये कहें कि भाई चाहे मोमिन हो या गैर मोमिन हो, मुनाफिक हो, बेचारा कैसे पहचानेगा बताए कि उसने कहाँ देखा, हमने कहाँ देखा। तो इसलिए इस चीज का जवाब आपको भी पता होना चाहिए इन हदीस से, क्योंकि यही हदीस लेके लोग मुख्तलिफ अकायद खुद से ही बना लेते हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा, जो मुनाफिक होगा या जो एक इंसान जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं होगा वो क्या जवाब देगा, समिया अख्तर आप बताएंगे।
जी
वालेकुम अस्सलाम
रहमतुल्लाह। आपकी आवाज बहुत थोड़ी मुझे सुन रही थी। जी
वो कहेगा, जी बिल्कुल, वो कहेगा मैं नहीं जानता। और दूसरी एक बहुत अहम बात है, वो कहेगा जो लोग कहते थे वही मैं कहता था। तो इसका मतलब है लोगों की देखा देखी, बचपन से जो पढ़ा दिया गया, बता दिया गया, उसने कह दिया, उसने कह दिया। हमारे मुल्क में सारे अगर मुसलमान ही बसते हैं तो जो सारे वो कह रहे हैं तो वही मैंने भी कह दिया, वो उससे कोई वहां पर निजात नहीं हो जाएगी। जब तक कि इंसान का अकीदा पुख्ता ना हो, ईमान पुख्ता ना हो, और वो वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल समझता हो, तो तभी वो गवाही दे सकेगा। और उसकी दलील क्या होगी कि फिर उसने अपनी जिंदगी भी वैसे गुजारी। ठीक है, अगर अपनी जिंदगी वैसे नहीं गुजारी जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, जैसे उनकी अहादीस को फॉलो नहीं किया, उनकी बात को फॉलो नहीं किया, तो फिर वो फिर तो जाहिर ही बात है उसने उनको उस तरह से रसूल समझा ही नहीं। अगर कोई किसी को ईमान रखता है कि ये रसूल है तो वो तो उनकी बात को फॉलो करेगा। अच्छा जी, अच्छा अब आप देखते हैं जी, अब ये 832 नंबर से 614 से जी, यहाँ पे ये आया कि आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इशारा भी किया, सुभान अल्लाह भी कहा नमाज में, और तो इशारा करके आसमान की तरफ भी बुला बताया और इस तरह से। तो इससे हमें क्या दलील मिलती है, क्या क्या पता चलता है?
नमाज में हल्के सा इशारा करने से नमाज नहीं टूटती।
शाबाश, यानी नफल नमाज और फर्ज नमाज की देखें उसमें यानी उसकी जो उसमें आप कर सकते हैं या जिन चीजों से वो टूटती है थोड़ा सा फर्क रह जाता है। जाहिर है नफली नमाज का वो दर्जा तो नहीं जो एक फर्ज नमाज का, फर्ज नमाज तो आपका बहुत ही ज्यादा आगे के लेवल का, तो उसमें बहुत ज्यादा आपको केयरफुल होना पड़ता है। लेकिन ये चूंकि नफली नमाज थी तो ज्यादा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने देखिए सुभान अल्लाह भी बोल दिया या इशारा भी कर दिया, तो उससे नमाज नहीं टूटती। इसी तरह आपने देखा कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सर पे पानी भी डाल लिया यानी अपने आप को होश में रखने के लिए, तो उससे उनकी नमाज नहीं टूटी। क्या हम नमाज में ऐसे ही समझते हैं कि बिल्कुल रोबोट की तरह बन जाए ना, ऐसा नहीं है। अच्छा जी, और कौन रह गया ये यहाँ? वहाँ पे राफिया बेगम आपका हो गया। अच्छा, ये 732
जी, इस नमाज की कोई अजान और कोई अकामत नहीं होती।
जी शाबाश, इस नमाज की कोई ना अजान है ना इकामत है, बल्कि बस इसी तरह लोगों को ऐलान कर दिया जाता है कि लोगों जमा हो जाओ नमाज के लिए, जमा हो जाओ नमाज के लिए। अच्छा एक बात मैं सोच रही थी कि सुभान अल्लाह, हमने शायद अपनी पूरी जिंदगियों में, पता नहीं आप लोगों ने देखा या नहीं, मगर एक तो ये कम कम होता है, अल्लाह ताला बस महफूज रखे, क़यामत की निशानियों में से हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों की होना तो, लेकिन एक तो ये कम होता है, लेकिन अदरवाइज कहीं देखा भी नहीं है कि ऐसे नमाज के लिए बुलाया जाए, या कहीं तमाम हो रहा है, या कहीं कहा जा रहा है भाई आओ लोगों जमा हो जाओ इस नमाज के लिए, कहीं आपने पढ़ी हो कभी? मैंने तो नहीं देखा, सच बात है। अगर आप लोगों ने देखा है किसी ने तो बताएं। जी, जगह जिस जगह हो रहा हो ना वहां पे पड़ी जाती है, तो ऐसे तो देख करके इन चीजों को आम करने की जरूरत है, इन चीजों को लोगों तक आगे बताने की जरूरत है, इस चीज को फैलाने की जरूरत है। और हम जब ये अहादीस पढ़ रहे हैं और हमने ये चैप्टर पढ़ लिया, तो कहीं ना कहीं जरूर कोशिश करें कि आप इसको शेयर करें। अच्छा जी, और कौन रह गया जिससे मैंने नहीं पूछा हो? ये 377-7133-77 ये कौन है? अच्छा तैयबा, आपका तो हो गया। अच्छा, इनका नाम लिख दें फिर आगे, ताकि मुझे 718 से 718854। जी शाजिया नासिर, आप बताएंगे कि औरत की नाशुक्री के बारे में क्या पता चलता है इन अहादीस से?
औरत तो सबसे पहले तो अपने हस्बैंड के नाशुक्री करती है कि जब भी कोई छोटे से घर में मामला हो जाए, बात हो जाए, तो कहती है मैंने तुमसे तो कोई भलाई देखी ही नहीं है।
सही, तो इसका इन इसमें क्या हुआ, हदीस में एक नमाज कुसूफ की हदीस में कैसे ये बात आ गई?
क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नम दिखाई गई थी इस नमाज के दौरान, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि जन्नत में जहन्नम में मैंने सबसे ज्यादा औरतों की तादाद देखी है और औरतों में नाशुक्री बहुत पाई जाती है।
शाबाश, वेरी गुड शाजिया, बहुत अच्छा आपने बताया कि यानी आप ये देखें, सुभान अल्लाह, वैसे हमें अपनी जुबानों को कितना कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि वाकई ऐसे होता है कि जब कभी कोई लड़ाई हो या कुछ हो, या शौहर ने गिफ्ट नहीं दिया किसी ओकेजन पे, तो बस कहते हैं ना आपने तो कभी मुझे कोई गिफ्ट दिया ही नहीं, मैंने तो आज तक कभी, जो चीजें वो आगे पीछे लेके देते हैं वो सारी भूल जाते हैं। इसी तरह कोई भी छोटी सी बात हो जाती है तो कहते हैं मैंने तो इस घर में जब से आई हूँ ना, जब से मेरी शादी हुई है, मैंने नहीं कभी ये चीज देखी कि इन्होंने ऐसे मेरे साथ कोई अच्छाई की हो, फलाने का हस्बैंड ऐसे करता है और ये नहीं, या वो फलां तोहफे तहाइफ देता है और ये नहीं, आपने नहीं कभी इस तरह से मेरा ख्याल किया, आपने कभी ऐसे मेरा ध्यान करते, आपने कभी मुझे इस तरह से यानी तवज्जो नहीं करी जैसे और लोगों के इस तरह शौहर होते। तो ये यानी जरूरी नहीं, आप एग्जैक्ट वर्ड्स के ऊपर नहीं जाएं कि मैंने तुमसे कभी कोई भलाई नहीं देखी, अगर यही होगा तो फिर ना शुक्री के ही ये भी वर्ड्स हैं, और जितने ये मैं अभी वर्ड्स बोलती हूँ ये भी सारे ना शुक्री के ही हैं। आपने तो कभी मेरे साथ ऐसे नहीं किया, आप तो कभी मेरे साथ अच्छा करते ही, मैंने तो कभी नहीं देखा कि आपने मुझे ऐसे किया, इस तरह से जो वर्ड्स कहना है ना ये सब ना शुक्री के। और इसकी वजह से अब देखिए कि कितना कॉमन है हमारे अंदर, इसकी वजह से जहन्नुम में चले जाना, आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। और चूंकि ये हम खवातीन से रिलेटेड है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर ही हमारे मुंह से निकल जाता है, जरा से भी कोई बात हुई ना, बस इस दफा भूल गए ईद पे कोई गिफ्ट देना, बस ठीक है देख लिया मैंने, आपने तो कभी आज तक मेरा ध्यान ही नहीं किया, कितनी ज्यादा ये बात हो जाती। तो वो जो सारी जिंदगी को एक लपेट लेना ना, वो नहीं करना। क्या आप उसको पॉजिटिव सेंस में भी कह सकते हैं कि अगर आप मुझे देते तो मुझे अच्छा लगता कोई गिफ्ट, या कुछ और तरह से पॉजिटिव सेंस में भी कह सकते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी को उसमें शामिल कर लेना ना, कि एक दिन की बात को सारी जिंदगी के पिछले पानी फेर दिया और अब कह दिया कि कभी भी नहीं मैंने आपसे कोई अच्छाई देखी, वो एक नाशुक्री के कलिमात है। तो इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। मुस्ताद आ चुके हैं, سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته